संबंध। पूर्व श्लोक में भगवान ने बताया कि यज्ञ के लिए कर्म करने से संपूर्ण कर्म विलीन हो जाते हैं। साधकों की रुचि, विश्वास और योग्यता की भिन्नता के कारण साधन भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। इसलिए अब आगे के 7 श्लोकों में माने 24वें से 30वें श्लोक तक भगवान भिन्न भिन्न प्रकार के साधनों का यज्ञ रूप से वर्णन करते हैं। ब्रह्मार्पणम् ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतौ ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्म कर्म समाधिना। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात जिससे अर्पण किया जाए वे सुख सभा आदि पात्र भी ब्रह्म है। हव्य पदार्थ तिल जो घी आदि भी ब्रह्म है और ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है। ऐसे यज्ञ को करने वाले जिस मनुष्य की ब्रह्म में ही कर्म समाधि हो गई है उसके द्वारा प्राप्त करने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। व्याख्या। यज्ञ में आहुति मुख्य होती है। वह आहुति तब पूर्ण होती है जब वह अग्नि रूप ही हो जाए अर्थात हव्य पदार्थ की अग्नि से अलग सत्ता ही न रहे। इसी प्रकार जितने भी साधन है सब साध्य रूप हो जाए तभी वे यज्ञ होते हैं। जितने भी यज्ञ हैं उनमें परमात्म तत्व का अनुभव करना भावना नहीं है प्रत्युत वास्तविकता है। भावना तो पदार्थों की है। इस 24वें श्लोक से 30वें श्लोक तक जिन यज्ञों का वर्णन किया है वे सब कर्मयोग के अंतर्गत है। कारण कि भगवान ने इस प्रकरण के उपक्रम में तो तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष से सुभात 4:16 में कहा है और उपसंहार में भी कर्मजान विद्यतान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्ष से 4:32 में भी ऐसा ही कहा है और बीच में भी कहा है यज्ञायाचरत कर्म समग्रम प्रविलीयते 4:23। मुख्य बात यह है कि यज्ञ कर्ता के सभी कर्म अकर्म हो जाए। यज्ञ केवल यज्ञ परंपरा की रक्षा के लिए किए जाए तो सबके सब कर्म अकर्म हो जाते हैं। अतः इन सब यज्ञों में कर्म में अकर्म का ही वर्णन है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि। जिस पात्र से अग्नि में आहुति दी जाती है उस सुख श्रवा आदि को यहाँ अर्पण पद से कहा गया है। अर्प्यते अनेन इति अर्पणम। उस अर्पण को ब्रह्म ही माने। तिल जौ घी आदि जिन पदार्थों का हवन किया जाता है उन हव्य पदार्थों को भी ब्रह्म ही माने। ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम। आहुति देने वाला भी ब्रह्म ही है। 13:2 जिसमें आहुति दी जा रही है वो अग्नि भी ब्रह्म ही है और आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म ही है ऐसा जानो। ब्रह्म कर्म समाधिना। जैसे हवन करने वाला पुरुष श्रुवा हवि अग्नि आदि सबको ब्रह्म का ही स्वरूप मानता है ऐसे ही जो प्रत्येक कर्म में कर्ता करण कर्म और पदार्थ सबको ब्रह्म रूप ही अनुभव करता है उस पुरुष की ब्रह्म में ही कर्म समाधि होती है अर्थात उसकी संपूर्ण कर्मों में ब्रह्म बुद्धि होती है। उसके लिए संपूर्ण कर्म ब्रह्म रूप ही बन जाते हैं। ब्रह्म के सिवा कर्मों का अपना कोई अलग स्वरूप रहता ही नहीं। ब्रह्मैव तेन गंतव्यम्, ब्रह्म में ही कर्म समाधि होने से जिसके संपूर्ण कर्म ब्रह्म रूपी बन गए हैं उसे फल के रूप में निस्संदेह ब्रह्म की प्राप्ति होती है। कारण कि उसकी दृष्टि में ब्रह्म के सिवा और किसी की स्वतंत्र सत्ता रहती नहीं। इस 24वें श्लोक को शिष्ट जन भोजन के समय बोलते हैं, जिससे भोजन रूप कर्म भी ब्रह्म बन जाए। भोजन रूप कर्म में ब्रह्म बुद्धि इस प्रकार की जाती है। पहला, जिससे अर्पण किया जाता है वो हाथ भी ब्रह्म रूप है, सर्वतः पाणि पादम तत् 13 का 13। भोजन के पदार्थ भी ब्रह्म स्वरूप है, अहमे वाज्यम 9 का 16। भोजन करने वाला भी ब्रह्म रूप है, ममैवांसो जीवलोके 15 का 7। जठराग्नि रूप भी ब्रह्म है, अहम वैश्वान रह 15 का 14। भोजन रूप क्रिया अर्थात जठराग्नि में अन्न की आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है, अहम हुतम 9 16। इस प्रकार भोजन करने वाले मनुष्यों के द्वारा प्राप्त करने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। यज्ञ शिष्टा मृत बुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम 4 का 31। मार्मिक बात, प्रकृति के कार्य संसार का स्वरूप है क्रिया और पदार्थ। वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो प्रकृति या संसार क्रिया रूप ही है। कारण कि पदार्थ एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, जिसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। अतः वास्तव में पदार्थ परिवर्तन रूप क्रिया का पुंज ही है। केवल राग के कारण पदार्थ की मुख्यता दिखती है। संपूर्ण क्रियाएं अभाव में जा रही हैं। अतः संसार अभाव रूप ही है। भाव रूप से केवल एक अक्रिय तत्व ब्रह्म ही है, जिसकी सत्ता से अभाव रूप संसार भी सत्तावान प्रतीत हो रहा है। संसार की अभाव रूपता को इस प्रकार से समझ सकते हैं। संसार की 3 अवस्था होती है, उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय। जैसे वस्तु उत्पन्न होती है, फिर रहती है और अंत में नष्ट हो जाती है, या मनुष्य जन्म लेता है, फिर रहता है और अंत में मर जाता है। इससे आगे विचार करें तो केवल उत्पत्ति और प्रलय का ही क्रम है, स्थिति वस्तुतः है ही नहीं। जैसे यदि मनुष्य की पूरी आयु 50 वर्ष की है तो 20 वर्ष बीतने पर उसकी आयु 30 वर्ष ही रह जाती है। इससे आगे विचार करें तो केवल प्रलय ही प्रलय है, उत्पत्ति है ही नहीं। जैसे आयु के जितने वर्ष बीत गए उतने वर्ष मनुष्य मर ही गया, इस प्रकार मनुष्य प्रतिक्षण ही मर रहा है। उसका जीवन प्रतिक्षण ही मृत्यु में जा रहा है। दृश्य मात्र प्रतिक्षण अदृश्य में जा रहा है। प्रलय अभाव का ही नाम है, इसलिए अभावी शेष रहा। अभाव की सत्ता भाव रूप ब्रह्म पर ही टिकी हुई है। अतः भाव रूप से एक ब्रह्म ही शेष रहा, सर्वम खल्विदम ब्रह्म वासुदेव सर्वम।